श्लोक व्युत्पन्नमिति गौड़ीयैर्नातिरूढ मपिष्यते यथा न्यर्तर्जुना जन्म सदृक्षांको वलक्षगुः। गौण मार्ग के कवियों को अत्यंत अप्रसिद्ध अर्थ वाले पदों का प्रयोग भी ज्ञान का प्रदर्शक होने के कारण इष्ट है, जैसे वलक्ष गो वाला अति अर्जुन के विपरीत अवजन्म अब से उत्पन्न के अंग के सदृश अंक से युक्त है। वैदर्भ मार्गाभिमत प्रसाद गुण के विवरण के पश्चात गौण मार्ग में उसके प्रति अरुचि उन्हें इष्ट विपर्यय को बताकर स्पष्ट की है। प्रसाद का विपर्यय गौण मार्ग वाले कवि काव्य कला में भी कसरत को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वैदर्भ मार्ग के कवि जहां अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग भी उचित नहीं मानते, वही गौण मार्ग के कवि अत्यंत अप्रसिद्ध पदों के प्रयोग को व्युत्पत्ति प्रदर्शन के लिए उपयुक्त पाकर काव्य में उचित मानते हैं। उनकी दृष्टि में पदों का शास्त्र शुद्ध व्याकरण से सिद्ध व्युत्पन्न होना मात्र आवश्यक है। उदाहरणार्थ दंडी ने वैदर्भ मार्ग के प्रसाद के उदाहरण के लिए के विषय कलंक युक्त चंद्र को ही गौण मार्ग के अनुसार प्रस्तुत किया है। अर्जुन श्वेत अनर्त्यर्जुन अनत्य श्वेत कृष्ण अभजन्म जलज कमल अनत्यर्जुनाभजन्म नील कमल इंदिवर सदृक्ष सदृक्ष वलक्ष श्वेत गो रश्मि वलक्षगु श्वेत रश्मियों वाला इंदु। इस पद्यबंध में केवल अंग शब्द ही कुछ प्रसिद्धार्थक है, यों इसके भी कई अर्थों में लक्ष्म अर्थ एक हैं। अर्जुन शब्द कुंती पुत्र अर्जुन तथा कांतिवीर सहस्त्रार्जुन के लिए तो तारतम्य से प्रसिद्ध है, पर श्वेत के लिए कोशों में ही उद्दिष्ट है, प्रयोग में नहीं। अब जन्म शब्द भी जलज आदि की अपेक्षा अप्रसिद्धि है। बहुब्रीही से सादृश्य की प्रतीति इंदिवर द्विती के समान हो सकती थी, तब सदृश का प्रयोग अधिक पदत्व दोष है। वलक्ष शब्द भी धवलार्थ में कोशगत ही है, प्रयोग में नहीं। गो शब्द के नाना अर्थों में रश्मि एक अर्थ है, वलक्ष गु श्वेत गु कदाचित तथा तदपेक्षया भी श्वेत रश्मि की तुलना में वलक्ष गु अप्रसिद्ध अप्रयुक्त तो है ही, श्रुति सुभग भी नहीं है। यो समूची रचना ही श्रुति कटु है, पर ओज प्राण गौण मार्ग के लिए यह तो ग्राह्य है। श्लोक समम बंधेश्व विषमम ते मृदुस्फुट मध्यमाः बंधा मृदुस्फुटोन मिश्र वर्ण विन्यास योनयः। बंधों में विषमता से रहित काव्य सम होता है। मृदु स्फुट तथा दोनों के मिश्रण से युक्त वर्ण विन्यास से उत्पन्न वे बंध मृदु स्फुट एवं मध्यम कहलाते हैं। बंध के आधार पर श्लेष गुण पीछे बताया जा चुका है, अब बंध के एक अन्य प्रकार के आधारों पर समता नामक तृतीय गुण बता रहे हैं। समता बंध पर आधारित होने के कारण यह शब्द गुण है। द्विविध वर्णों के त्रिविध विन्यास के कारण काव्य रचना में यह गुण आता है। जिन मुक्तक आदि पद्यबंधों में या गद्यबंधों में विषमता नहीं होती, बंध के आदि मध्य और अंत में समान प्रकार का ही वर्ण विन्यास होता है, वे बंध समता गुणों से युक्त कहलाते हैं। इस गुण के आधार वर्ण विन्यास को दंडी ने मृदु और स्फुट वर्णों से निष्पादित करके उसके तीन भेद किए हैं। मृदु वर्ण के विन्यास वाला मृदु बंध, स्फुट वर्णों के विन्यास वाला स्फुट बंध, दोनों प्रकार के वर्णों के मिश्रित विन्यास वाला मध्यम बंध। मृदुता से अल्प शिथिल कोमलता अभिप्रेत है, जो वर्ण उच्चारणा वयवों के तनाव के बिना बोले जाते हैं, वे श्रवण में भी मृदु प्रभाव ही उत्पन्न करते हैं, अतः कोमल कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण इस दृष्टि से मृदु हैं, अल्प प्राणों में भी अघोष वर्णों से घोष वर्ण मृदु हैं, इति से इदि मृदु है। व्यंजना के संयोग से न केवल कठोरता आती है, अपितु संयोग के पूर्वांग कोमल वर्णों की कोमलता भी कम हो जाती है। कोमल वर्णों का संयोग भी उतना कठोर नहीं होता, असवर्ण कठोर वर्ण के साथ संयोग में कठोरता अधिक होती है। सवर्ण वर्ण के साथ संयोग में कम कठोरता होती है। चक्षु की अपेक्षा चक्षु कम कठोर है, यही कारण है कि संयोग बहुल प्रकृत संस्कृत की अपेक्षा कोमल मानी गई है। रेफ यदि संयोग का पूर्वांग है तो परांग रेफ की अपेक्षा अधिक कठोरता उत्पन्न करता है। तर्क से तक्र कम कठोर है। पूर्ववर्ती नासिक वर्णों के साथ कोमल वर्णों का संयोग कोमलता ही उत्पन्न करता है, किंतु कठोर वर्णों का संयोग कठोरता बढ़ाता है। अंत से अंध और अंबु से अंभस कठोर है। अंकुर और अंकुर से अंगूर और अंघ्री कठोर है, किंतु संयोग के परांग नासिक वर्ण कोमल वर्णों के साथ होते हुए भी कठोरता उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के संयोग में स्वरभक्ति से कोमलता लाई जाती है। रत्न रतन, किंतु अंत का अनत नहीं होता। संस्कृत के न और तन प्रत्यय इसी प्रवृत्ति की व्याकरणों द्वारा स्वीकृति है। नूतन नूतन, मृदुता उत्पन्न करने में स्वरों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण प्राकृति में व्यंजन का लोप हो जाता है, स्वर का नहीं। वचन वयन वैन प्राकृतिक पाई और पाऊ अ स्वर स्वभावतः कोमल है। आ की अपेक्षा अ अर्थात दीर्घ स्वरों से ह्रस्व स्वर कोमल है। दीर्घों में भी ए और कम कोमल है, जबकि ए ओ उनसे कोमल है। इसलिए शिक्षा शास्त्रों के कुछ संप्रदायों में इन्हें ए औ का ह्रस्व रूप कहा जाता है, किंतु लगातार ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के प्रयोग से बंध में कोमलता तो रहती है पर शिथिलता आ जाती है। अतः बीच बीच में प्रकृति से भिन्न लघु गुरु या दीर्घ स्वरों का प्रयोग रचना को सुबद्ध सुगठित गाढ़ श्लिष्ट कसा हुआ करने की ओर एक कदम है। यह स्थिति कोमल व्यंजनों के प्रयोग की है। मृदु वर्णों के विपरीत महाप्राण वर्ण उच्चारण में तनाव की अपेक्षा तो करते ही हैं, सुनने में भी कठोर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इनमें भी घोष महाप्राण वर्ण अघोष महाप्राण वर्णों से कठोर है। ट वर्गीय वर्ण सब वर्णों से कठोर है। मूर्धन्यता घोषता और महाप्राण के संगम के कारण ढ ट वर्ग चतुर्थ वर्ण कठोर वर्णों का सिरमौर है, संयोग में सर्वाधिक कठोर है। ड और ढ का संयोग गुरु स्वर दीर्घ की अपेक्षा कठोर होता है। अर्क से आक कोमल है, किंतु कोमल संयोग के कारण होने वाली गुरुता कठोर संयोग से उत्पन्न गुरुता की अपेक्षा कोमल है। अंत अश्व आदि का अ अक्ष स्पर्श आदि के अ से कोमल गुरु है। संयोग की कठोरता की चर्चा ऊपर मृदुता के संदर्भ में की जा चुकी है। श्लोक को किला लाप वाचालो मामेति मलयानिलह उच्छलच्छी कराच्छच्छ निर्जरांभ कडोक्षितः। कोयल के आलाप से वाचाल मलयानिल मुझे आ रहा है। उछलती हुई बुंदियाओं वाले अत्यंत स्वच्छ झरने के जलकणों से सिंचित है। आचार्य दंडी ने संभवतः संक्षेप प्रियता के कारण मृदुत्व आदि की व्याख्या नहीं की है और उदाहरण भी पूरी चतुष्पदी के न देकर द्विपदी के ही दिए हैं। चतुष्पदी को यूनिट मानने पर यही श्लोक समता के विपर्यय वैषम्य का उदाहरण बन जाते हैं। 48वें श्लोक की प्रथम अर्धाली में मृदु वर्ण विन्यास योनि मृदु बंध की समता का और द्वितीय अर्धाली में परुष वर्ण विन्यास योनि स्फुट बंध की समता का उदाहरण है। प्रथम अर्धाली में सभी वर्ण अल्प प्राण है, दीर्घ स्वर 9 है, ह्रस्व 6 तथा विसर्ग के कारण गुरु अंत में 1 है। दीर्घ और ह्रस्व बीच बीच में पिरोए हुए हैं, संयुक्त अक्षर 1 भी नहीं। इस प्रकार इस बंध में आदि से अंत तक मृदु वर्णों का प्रयोग किया गया है। द्वितीय अर्धाली में महाप्राण तथा असंयुक्त अल्प प्राण वर्ण साथ साथ हैं। सात संयुक्त अल्प प्राण वर्ण महाप्राणों के साथ ही संयुक्त हैं। दो बार विसर्ग का प्रयोग हुआ है, ह्रस्व 6 गुरु 5 और दीर्घ भी 5 ही हैं। इस प्रकार यह रचना आदि से अंत तक महाप्राण वर्णों के अनुरण से भरी पड़ी है। अल्प प्राण वर्ण तो इसमें दबे पड़े हैं, संयोग भी महाप्राण प्रधान है। श्लोक स्पर्धत्ते रुद्ध मध्धर्ययुवर रामा मुखानिलहि इत्यनालोच्य वैषम्यर्थालंकार डंबरौ। क्षमा चाहती हूँ। श्लोक चंदन प्रणियोत गंधिर मदौ मलय मारुतः स्पर्धत्ते रुद्ध मध्धर्ययुवर रामा मुखानिलहि इत्यनालोच्य वैषम्य अर्थालंकार डंबरौ अवेक्षमाणा ववृते पौरस्त्या काव्य पद्धति। मलय मारुत चंदन से परिचय के कारण उठती हुई महक वाला है। स्पर्धत्ते रुद्ध मध्यर्यो वर रामा मुखा निलह अर्धाल में विषमता को दृष्टि में न रखकर अर्थ के शोभादायक तत्वों और शब्दाडंबर को देखती हुई पूर्वियों की काव्य पद्धति क्रियाशील हुई। 39वें श्लोक के पूर्वार्ध में उन्मिश्र वर्ण विन्यास वाले मध्यम बंध का उदाहरण दिया है। इसके प्रथम पाद में वर्णों में केवल ध एक बार रेफ शिरस का संयोग से पूर्व आया है। शेष वर्ण मृदु अल्प प्राण ही है, उनमें परुषता संयोग से ही आती है, अर्थात यह परुषता द्वितीय पाद के कोमल बंध के एकदम विरुद्ध अर्धनारेश्वर वाली परुषता नहीं है। अतः परुषता और कोमलता का उचित अनुपात बना रहा है, अतः यह समता ही है, विषमता नहीं। समता गुण का लक्षण भेद तथा उदाहरण देने के बाद आचार्य दंडी ने गौण मार्ग में अभिष्ट समता का विपर्य बंध की विषमता उदाहरण से बताई है। 39वें श्लोक के उत्तरार्ध में प्रथम पाद में घोष महाप्राणों से संयुक्त घोष अल्प प्राणों एवं ध में रेफ शिरस्क घोष अल्प प्राण और घोष महाप्राण के संयोग से कठोरता पूरे रूप में उभरी है, जबकि द्वितीय पाद में असंयुक्त अल्प प्राणों की बहुलता है। महाप्राण तो केवल एक अघोष ख है। इस प्रकार दोनों पादों में विषमता स्पष्ट है। श्लोक 50। पौरस्त कवि तथा सहृदय बंधों की इस प्रकार की विषमता को महत्व नहीं देते। वे अर्थ के अलंकार शोभाकारक तत्वों और शब्दाडंबर को महत्व देते हैं। शब्द को आडंबरमय घटाटोपमय बनाने में वे बंध की विषमता को तथा समास बहुलता को उपयोगी मानते हैं। रत्नश्री ज्ञान ने 48वें श्लोक को आधे आधे विजातीय मृदु और स्फुट बंधों के वर्ण संकर से विषम बंध का भी उदाहरण बताया है तथा 49वें श्लोक को एक तृतीय पाद में विजातीय विषम बंध का उदाहरण बताया है। उन्होंने केवल मृदु बंध और केवल स्फुट बंध श्लोकार्धों की पूर्ति यों की है। कोकिलालाप वाचालो मामेति मलयानिलह आज्ञा मुद्याम कामस्य कालस्य कथयन्निव विभर्ति भ्रांति मुद्भुतो ब्रह्म राणाम प्रभंजन उच्छलच्छी कराच्छाच्छ निर्झरांभ कटोक्षितः। भरत का समता गुण अधिकांश में तो अर्थगुण ही प्रतीत होता है। अभिनवगुप्त ने प्रथम पाद में शब्दगत समता का लक्षण माना है। रचना में असमस्त पद अधिक न होने से समता गुण होता है। इसके बाद उन्होंने उपक्रांत मार्ग को नहीं छोड़ना समता बताकर भरत पर वामन का आरोप कर दिया है। वामन ने श्लोक और बंध के आरंभ में स्वीकृत मार्ग का अंत तक निर्वाह करने को शब्दगत और अर्थगत समता गुण माना है। उदाहरण से प्रतीत होता है कि शब्दगत समता में उन्हें मार्ग से समासों की अल्पता या भूयस्ता अभिप्रेत है। अतः वामन की समता दंडी की वर्ण विन्यास योनिबंध में विषमता के अभाव पर आधारित समता से भिन्न है। सुगमत्व रूपी अवैषम्य वाला समता अर्थगुण दंडी के प्रसाद गुण के निकट है। यह पीछे प्रसाद के प्रसंग में बताया जा चुका है। अग्निपुराण में समता गुण नहीं है।